वल्लाहु आलमु बीईमानिकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ये लौंडियों के साथ उस जमाने में भी शादी करना तो बहुत ही कम चीज समझी जाती थी, इनसे क्यों शादी की जाए, ये तो कम स्टेटस की हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे ईमानों को जानता है कि तुम सारे ईमान वाले हो, वो भी ईमान वाली हैं, तुम भी ईमान वाले हो। बादुकुम में बाद, तुम्हें से बाज में से, सारे आदम की औलाद है ना। अगर वो लौंडियां हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कोई और चीज मखलूक हो गई, या कोई कोई उनके अंदर गंदगी पलीती हो गई, वो भी तुम्हारी ही तरह। पहले हमने शुरू सूरह निसा का क्या पढ़ा, एक माँ बाप की औलाद हो तुम एक बिग फैमिली हो बस। तो उनका भी ईमान वाली जो लौंडियां, यानी ऐसे नहीं कि मुशरिका लौंडी के साथ कर लो, फंक के हुन्ना भी इतनी अहली हिन्ना। अब यहां पे भी देख लें आप, निकाह की जो शरायत हैं वो बताई गई, उनके साथ निकाह करो, ऐसे नहीं कि तुम कोई भी लौंडी है तो उसके साथ निकाह कर लो, बल्कि क्या कहा गया, भी इतनी अहली हिन्ना, उनके अहल के, अहल से मुराद यहाँ पे क्या, उनके जो आका हैं, जो उनके वली हैं, उनके इज़न के साथ, क्योंकि लौंडी का जो आका होता है वही उसका वली होता है, उसके कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते कि कोई उसके बाप उसका वली होगा, उसका जो जिसके पास जिसकी मिल्कियत में वो है वो उसका वली होता है। अब ये जरूरी नहीं था कि हर एक जो आदमी था वो अपनी लौंडी के साथ ताल्लुक रखता था, ताल्लुकात कायम करता था, नहीं, बाज लौंडियों की शादियां, कोई मांगता था रिश्ता तो उसकी शादी कर देते थे वो, लेकिन मिल्कियत तो उसी मालिक की रहती थी। तो उनकी इजाजत के साथ तुम शादी कर सकते हो। तो यहां पर भी पता चला कि वली की रजामंदी कितनी ज्यादा जरूरी है, कि एक लौंडी भी ऐसे नहीं कर सकते खुद ही उठ के जाके कहीं शादियां करने लगे, उसको भी वली की रजामंदी चाहिए। वा आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना बिल मारूफ, इनको भी इनके मेहर दो, चाहे वो लौंडी है। तो आज देखें, अल्लाह अकबर, इसको बात को मैं पढ़ के सोच रही थी, आज एक आजाद और खानदानी औरत की इतनी वैल्यू भी नहीं रही जो एक लौंडी की उस जमाने में होती थी। लौंडी को भी कहा गया मेहर दो, तो लौंडियों को भी मेहर दिए जाते थे, फिर उनकी शादियां होती थी। लेकिन आज सद अफसोस है, आज आप क्या कहते हैं कि औरत आजाद हो गई, औरत को तो बड़े हकूक मिल गए, औरत को तो ऐसे हो गया। आज तो औरत को जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं वो उनसे भी महरूम है। जाहलियत के जमाने वाली चीजें चल रही हैं, आजादी कोई नहीं है, ये है आजादी कि तुम उनको दो, उनको किंतार तक तुम दे सकते हो, भर भर के भी दे सकते हो। अब इसके ऊपर कुछ लोगों को बड़ा एतराज होता है, बाज दफा लड़के के ही घर वालों को बड़ा घेरते हो, क्यों क्यों दें हम, क्यों हम इसकी झोलियां भरें, क्यों हम इसके नाम कुछ लगा दें। और अगर उनका बेटा या भाई कुछ अपनी बीवी के नाम कर देता है, उसको तोहफा दे देता है या कुछ, तो इस पे बहुत बड़ा एतराज किया जाता है, हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर मेहर में भी देना चाहता है कोई दे सकता है, अगर उसके पास इतने अफोर्ड कर सकता है देना चाहे दे दे। तो तू ना दो उनको उनके मेहर बिल मारूफ, भले तरीके के साथ, यानी जो नॉर्म है उस वक्त का उसके मुताबिक उनको भी दो। मोहसनातिन, और वो भी ऐसी हों औरतें जो मोहसनात हो, यानी पाक दामन और पाक दामन रहना चाहती हूं। वही शरायत है जो आजाद औरत से निकाह के लिए थी ना, यानी ये नहीं कि बस उनके साथ भी तुम ऐसे दिल लगी के लिए कर लो, कि लौंडी ही है ना फिर क्या हुआ। तो वो भी वहां पे भी गैरा मुसाफे हाथ ना हो, ना बदकारी करने वाली हो, वला मुत्तखजाती अखदान, ना छुपी दोस्तियां बनाने, बल्कि सारे निकाह में महफूज होने वाली मोहसनात हो, यानी जो एक कैद में वाकई आने आने वाली हैं, एक जिंदगी गुजारने का इरादा है उनके साथ, वो भी ऐसी हो कि वो भी जिंदगी गुजारने के लिए आ रही हैं, वो भी सिर्फ इसके लिए नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वक्ती एक पैसे के लिए कर लिया, मेहर हासिल करने के लिए कर लिया, या आपने कोई दिल लगी के लिए कर लिया, इसके लिए नहीं हो, वो भी मोहसनात हो कि वो पाक दामन रहना चाहती हैं शादी करके, ये अपनी जरूरत यही पूरी करनी है। वो भी ऐसी हो कि बदकारी करने वाली ना हो, उनकी करेक्टर ऐसा लूज ना हो, क्योंकि लौंडियां थी ना, तो वो जाहिर है खानदानी औरत एक चीज देखती है कि मेरे खानदान की इज्जत है, ये है वो, फिर उसका एक डिफरेंट तरीका, तो उसकी ब्रॉटअप डिफरेंट हुई होती, जो लौंडियां वो उस तरह से नहीं होती। आप देखते हैं कि जो औरतें आज भी बेचारियां बिल्कुल ऐसे स्ट्रीट्स पे आ गई होती हैं, फिर उस उनके वो कानून कायदे नहीं रहते, फिर उस तरह से वो अपनी इज्जत की भी हिफाजत उस तरह ना कर पाती हैं, और जब वो ऐसे हाथों में चली जाती हैं तो फिर वो ये उनके लिए चीज कोई इतनी मुश्किल नहीं रहती उसके बाद कि वो किसी साथ भी ताल्लुक रख ले। वला मुत्तखिजाती अखदान, और ना बनाने वालियां छुपे दोस्त, छुपी दोस्तियां करने वाली ना हो, ऐसियों के साथ ना शादी करो। तो वो ऐसी होनी चाहिए जो, यानी यहां पे बताया गया कि छुप छुप के दोस्तियां करना, छुप छुप के ताल्लुकात रखना, ये इसको भी एक कंडेम किया गया, ये इश्क मुआशके चलाना, खुफिया ताल्लुकात रखना, ये ऐसी ना हो ये लौंडियां। और आज कल देखें ये खुफिया दोस्तियां कितनी कॉमन हो गई हैं। अब तो चैटिंग के नाम पे, और ये जो फोन्स आ गए हैं उस पे, और जो फेस टाइम है, और तरह तरह के और तरीके हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ बात करनी बल्कि देखना भी दूसरे को, उससे आधी मुलाकात से भी ज्यादा मुलाकात हो जानी, और वहां वहां तक दोस्तियां कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई बात ही नहीं रह गई, एक लड़की के बहुत सारे भी बॉयफ्रेंड हैं। तो ये ऐसी ना हो, जब एक लौंडी के लिए भी इस चीज को बताया गया, तो एक शरीफ खानदानी औरत को कैसा होना चाहिए? तो औरत किसी भी आदमी को, नामहरम आदमी को दोस्त नहीं बना सकती, बगैर निकाह के किसी के साथ भी, जो नामहरम है उसके साथ बगैर निकाह के ताल्लुकात नहीं रख सकती। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि छुपी दोस्तियां मना है तो खुली दोस्तियां हम कर सकते हैं, ये नहीं, बल्कि ये चीज क्योंकि आज ऐसी कॉमन हो गई कि ये भी एक बुरी बात नहीं समझी जाती, तो माँ बाप के लिए भी ये एक कोई मसले की बात नहीं है कि बेटियां अगर बॉयफ्रेंड बना के उनके साथ घूम फिर रही हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। यानी ये डेटिंग कल्चर आज हमारे अंदर भी ऐसे हो गया, हालांकि लौंडी तक को मना किया गया कि वो छुपी दोस्ती नहीं रख सकती, वो अब आ जाएगी निकाह के अंदर तो पाक दामन रहने के लिए आए, उसके बाद बदकारियां नहीं करनी, उसके बाद छुपी दोस्तियां ना हो। फाइजा ओसिन ना, तो जब आ जाए ओसिन हिसन के अंदर, यानी किले में आ जाए, मतलब क्या है कि निकाह में आ जाए, निकाह किला है ना, फइन अतई ना बिफाहिशन, फिर भी अगर वो फहाशी करती हैं यानी कोई जिना करती हैं, फअलैहिन्न निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो आपको पता है लौंडी का आधी सजा है आजाद औरत से, यानी वो उसको सिर्फ कोड़े लगेंगे, उसको रजम नहीं किया जाएगा। मगर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो चूंकि लौंडियां हैं तो इसलिए उनको तो कोई सजा ही नहीं मिलेगी, नहीं, अगर वो भी जिना करती हैं तो उनको भी सजा दी जाएगी। मगर देखें, याद रखें, इस्लाम ना सजाओं के ऊपर पहले जोर नहीं देता, पहले क्या किया गया, सद्दे जराए, यानी जो रास्ते हैं ना उस तरफ जाने के उनको बंद किया जाता है, यानी आपको अवेलेबिलिटी दी जाती है कि आप शादी कर सकते हैं, एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, चार करनी है, कर लो, लेकिन तुमने गलत काम नहीं करना, जिना नहीं करना। अगर तुम्हें आजाद औरत नहीं मिल रही, उनके मेहर इतने बड़े बड़े उन्होंने रखे हुए, डिमांड करती हैं, तुम किसी लौंडी से कर लो, किसी लोअर स्टेटस की औरत से, जैसे आज मसलन है किसी माशरे के अंदर है तो वो लोअर स्टेटस की औरत से कर सकता है कोई इंसान। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप, ये आपको जवाज मिल जाता है कि शादी नहीं हुई तो आप जो मर्जी करते फिर, और शादी नहीं किसी की हुई तो वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, रोजे रखे। शादी क्यों नहीं हो रही, अगर उस स्टेटस में नहीं मिल रहा तो अपने से कम स्टेटस में जाके कर ले, मगर कहीं पे गुंजाइश नहीं मिलती कि वो बदकारी करे, कहीं पे गुंजाइश नहीं है कि वो कोई हराम कामों में पड़ जाए, हराम तरीके या हराम जगहों पे जाए। तो ये सजाएं बताने से पहले इस्लाम रास्ते बंद करता है, पाकीजा माहौल देता है, फहाशी को कंडेम करता है, हलाल रास्ते खोलता है, और फिर भी कोई ये हदें तोड़ के हराम काम करता है तो कहता है अब सजा दो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हर तरफ पहले जिना को आसान बनाया हुआ है, निकाह को मुश्किल तरीन बना लिया, जब तक सेटल ना हो जाए, जब तक इतने पैसे ना जमा हो जाए, जब तक ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए, तब तक जाके हमने करनी ही नहीं शादी। अब वो लड़के 30-30 साल के हो जाए, लड़कियां 30-30 साल की हो जाए, कोई शादी का इरादा नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहते, कोई किसी और तरह से अपनी ख्वाहिशात फिर पूरी करते हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं ये हलाल रास्ते हैं, ये सारे बहुत सारे हलाल रास्ते ऑप्शंस दे दी, और फिर कहा फिर भी कोई इन हलाल रास्तों को छोड़ के हराम रास्तों पे जाता है तो फिर ये सजा है उसकी। ज़ालिका लिम, अब देखिए लॉन्डी के लिए भी अगर उसकी शादी नहीं भी हुई भी तो उसके मालिक से उसकी जरूरत पूरी हो रही है, वो भी जाके जिनाकारियां नहीं कर सकती। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये उसके लिए है जो गुनाह से बचना चाहता है, जो डरे कि मैं कहीं गुनाह में ना पड़ जाऊं। कोई आदमी अगर ये समझता है ना कि ये ना हो कि मैं कहीं जिना कर बैठूं, ये ना हो कि मैं कोई ऐसा गुनाह मेरे से ये हो जाए, तो अब वो गलत रास्ते पे पड़ने से बेहतर समझता है कि चलो मैं किसी लौंडी से ही कर लेता हूं। आज के वक्त में लौंडियां नहीं भी हैं तो आप ये समझते हैं कि किसी गरीब लड़की से कर लेता हूं, जहां पे कोई बेचारे माँ बाप उसकी क्या डिमांड होगी, तो मैं किसी गरीब घर की बच्ची से कर लेता हूँ, किसी यतीम बच्ची से कर लेता हूँ, कोई ऐसी से कर लेता हूँ जो जहां पे मुझे इतना कुछ ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो दालिक लिमन खशियल अनत, ये उसके लिए जो डरे इस बात से कि मैं गुनाह में ना पड़ जाऊं, यानी इंसान को गुनाह में पड़ने के अंदेशे पर जिसको पता है कि मेरे से कंट्रोल नहीं होगा अपना आप, वो फिर कोई रास्ता इस तरह से हलाल रास्ता निकाले। वह अन तस्वीर खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम सबर ही कर लो तो अच्छा है, अगर तुम इसमें ना पढ़ोगे तुम लौंडियों के साथ करोगे, जाहिर है ये लौंडी से शादी कर लेगा फिर उसके बाद आगे नस्लों तक की बात होती है, वो लौंडी उस तरह से हो सकता है ना उसकी नस्लों के लिए कर सके उनकी तरबियत जैसे एक खानदानी औरत कर सकती है, तो अगर तुम अपनी शहवत पे काबू पा ही लो तो ये बेहतर है कि फिर उसके बाद इतना ज्यादा जहां पे स्टेटस का फर्क आ जाए तो फिर वहां पे कई चीजें हो सकती हैं ऐसी जो कि बाद में निभाना हो, तो बेहतर है कि तुम फिर सबर कर लो। मगर तीसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, या तो फिर खानदानी औरत से करो, नहीं फिर लॉन्डी से कर लो, नहीं तो सबर कर लो, कहीं और कोई ऑप्शन है इसके सिवा कि फिर उसके बाद नहीं तुम जाओ कहीं से फ्रेंडशिप्स करके तो वहां पे तुम अपने शौक पूरे करो। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला तो ये चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है, लियुबय्यिना लकुम, ताकि बयान कर दे तुम्हारे लिए, खोल खोल के बयान कर दे। बय्यिन क्या होता है, यानी बय्यिन का माना होता है कि तारीकी से रोशनी में आ जाना, किसी चीज को ऐसे खोल के बयान कर देना कि इंसान को अंधेरे में ना रहे वो रोशनी में आ जाए, इतना किसी चीज को क्लियर कर देना। एक होता है ना कि इंसान को पता नहीं है, वो समझ ही नहीं है, अब ऐसी एक रोशनी कर दी गई, ऐसा एक ऐसी बात खोल के बयान कर दी गई कि वो अंधेरे से निकल गया, यानी जहालत के अंधेरे से निकल गया, उसको अब पता चल गया कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ये है बयान करना। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम डार्कनेस में रहो, तुम जहालत में रहो, तुम्हें पता ही नहीं है, सब कुछ कर लिया उसके बाद कहा हाय हमें तो पता ही नहीं था, तो अल्लाह नहीं चाहता ये कि तुम ऐसे बिल्कुल हर चीज से, और इसके अंदर बड़ा फखर समझते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें कहाँ पता है, हमें कोई इस्लाम के ये अहकामात नहीं पता, यानी लाइल्म रहने को ना अपने लिए बाकी चीजों से लाइल्म रहे तो उस पर शर्म खाते हैं, लेकिन आज वो हाल है कि इस्लाम से लाइल्म रहना भी फखर का बायस है, हमें कहाँ पता है कुरान का कि क्या लिखा, हमें इस्लाम इस्लाम की कोई चीजें नहीं पता, इतने फखर से आप बता रहे हैं। आपको वैसे वो कोई ये पूछे आपको फैशन का पता है, आपको हमें तो कोई फैशन का पता ही नहीं, इसको बताने में तो बड़ा ऐब महसूस करते हैं, बड़ी शर्म महसूस करते हैं, हमें आज के फैशन का ही नहीं पता, मैं इतनी बैकवर्ड हूं मुझे इतना ना पता हो, तो कुछ ना कुछ बताने की हर कोई कोशिश करता है कि सबको पता हो कि मैं भी अप टू डेट हूं, मगर दीन के मामले में पीछे रहने को अच्छा समझते हैं। और अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए क्या, कि बयान कर दे तुम्हारे लिए, खोल के तुम पे वाजे कर दे, बिल्कुल तुम्हें अच्छी तरह समझा दे, तुम्हें बिल्कुल किसी चीज का शको शुबा ना रहे। और फिर भी हमारी क्या शिकायत है, समझ ही नहीं आती क्या सही है कि क्या गलत है, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूं। वो अल्लाह ने खुद इरादा फरमाया, जब वो इरादा कर ले तो फिर कोई उसके इरादे को रोक नहीं सकता, तो उसने तो सब कुछ तुम्हें बयान कर दिया, खोल के बता दिया, बात सिर्फ क्या है, हम खुद इल्म लेना ही नहीं चाहते, ये हमें मान लेना चाहिए, हम खुद जानना ही नहीं चाहते, और उसकी क्या वजह है वो आगे आ रही है, हम खुद ही अंधेरों में ही रहना चाहते हैं, वरना अल्लाह ने नहीं कमी की, अल्लाह ने तो सब चीज बता दी हमें, और खोल के बता दी, वाजी है। अब इनमें क्या कंफ्यूजन है, हम खुद ही ना समझना चाहें तो अलग बात है, आंखें बंद करना चाहें चीजों से तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला लियुबय्यिन लकुम, ये इरादा रखता है कि तुम्हें बयान कर दे हर बात को। वह यहदी अकमर, अल्लाह ताला तो क्या चाहता है कि तुम्हें रहनुमाई करे, तुम्हें हिदायत दे। किसकी तरफ? हिदायत का माना पता है ना आपको, पहले भी बड़ी दफा आया, राह दिखाना, रास्ते पे चलाना, मंजिल तक पहुंचाना, ये होते हैं हिदायत के स्टेप्स। तो अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। कौन सी मंजिल, कौन सा रास्ता? सुनन अल्लदीन मिन कबलिकुम, उन लोगों के तरीकों पे तुम्हें चला दे जो तुमसे पहले गुजरे। कौन से लोग पहले गुजरे? यानी अंबिया, सालेहीन, नेक लोग, उनके जो तरीके हैं, अल्लाह चाहता है तुम्हें उनके तरीकों पे चला दे। देखिए अल्लाह ताला का इरादा हमें मुश्किल में डालना नहीं है। हम सोचते हैं हम अल्लाह हमें मुश्किल में डालना चाहता है। अल्लाह ताला तो तुम्हारे लिए बयान करता है, तुम्हारे लिए कितना इंतजाम किया, पैगंबर तुम्हारे लिए भेजा, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कुरान उतारा। हम कभी पढ़ती हूँ ना, पिछले दिनों में पढ़ रही थी इस चीज को, कि किस तरह वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होती थी, तो कैसे नबी अलैहिस्सलाम की कैसे हालत हो जाती थी। कौले सकील है ना, ये भारी कलाम है, तो आप सल्लम के कैसे पसीने आने लगते थे सर्दियों में भी, और ऊंटनी पे भी सवार होते थे तो इतनी बोझ को ऊंटनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बैठ जाती थी ऊंटनी, इतना आपके ऊपर बोझ होता था, वही लेना आसान काम नहीं था। आप सल्लम ने देखें 23 साल इस बोझ को लिया कि दिन रात वही आ रही है, कितनी दफा आई होगी, मल्टीपल टाइम्स आती रही। हमारे लिए इस मुशक्कत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया, जो बड़ी मुश्किल होती है, वही लेना आपके ऊपर बड़ा मुश्किल काम होता था, और हमने क्या कदर किया इसका, कि रख के बस छोड़ा हुआ है और कुछ नहीं। हमारे ऊपर तो ये लेना बोझ ही नहीं है, हमारे ऊपर तो इसको सीखना उस तरह से बोझ नहीं है, हमें तो बनी बनाई चीज मिल गई, पका पकाया खाना आ गया हमारे सामने, फिर भी उसके लिए कोई मेहनत के कोई शौक नहीं है, फिर कोई सीखने की उस तरह लगन नहीं है जैसे हम बाकी कामों के लिए शौक रखते हैं, ऐसी मेहनत नहीं है, ऐसी भाग दौड़ नहीं है। वर्थलेस कामों के लिए हम उतनी भाग दौड़ करते हैं, उन उन दर्जियों के पास, उन और शॉपिंग में और उन दुकानों के ऊपर जिन चीजों को हमने बाद में गार्बेज कर देना होता, कितनी मेहनत है हमारी, जहेज तैयार करने में, बरियां तैयार करने में कितनी मेहनतें हैं, एक शादी अटेंड करने पे कितनी हमारी मेहनत लगती है, बहन भाई की किसी शादी हो तो हम कितने दिन बाजारों में घूमते हैं, और अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, कुरान को सीखने के लिए कोई मेहनत नहीं। अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हें राह दिखाए। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की इंसान के साथ जो हमदर्दी है और खैरख्वाही है और मोहब्बत है, उसका पता चलता है नायात से। कोई अपने प्यारे के लिए ही चाहता है ना, आप अपने बच्चों के लिए चाहती हैं ना कि वो सही रास्ते पे चले आए, वो कहीं बिगड़ ना जाए, वो कहीं रास्ता उल्टा कोई और इख्तियार ना कर लें गुमराही का, अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, लेकिन हम तुड़ा तुड़ा के जाना चाहते हैं इस रास्ते से, अपने आप को आजाद कराना चाहते हैं कि बस ये रास्ता नहीं। वह यतूबा अलैकुम, और मेहरबान हो तुम पर अल्लाह का ये इरादा, ये 3 चीजें हैं अल्लाह का इरादा। क्या पहली चीज है? कि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी मिले। दूसरा क्या इरादा है? तो तुम्हें राह दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जो बड़े अल्लाह को प्यारे थे, सिराते मुस्तकीम तुम्हें दिखाए, उस पे चला दे, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह का कोई शौक नहीं है तुम्हें अजाब देने का, अल्लाह का कोई ऐसा इरादा नहीं कि तुम्हें जहन्नुम में फेंके, उसके तो यही इरादा है कि मेहरबान हो तुम पर, अलैकुम, सारे जितनी भी बातें हैं वो इंसान की फायदे की है ना, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। ये उसने पाबंदियां नहीं तुम पे लगाएंगे, तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, वो कोई तुम्हें मुसीबत में डालना चाहता है, ऐसे ऐसे मुश्किल बातें इनको कहें कि ये इनसे कर ही ना जाए, ऐसे नहीं अल्लाह का इरादा। अल्लाह ताला तो मेहरबान होना चाहता है तुम पे, वो चाहता है तुम पे मेहरबानियां करे, इसलिए अल्लाह ने ये अहकाम दिए, तुम्हारी जिंदगियां इससे पुरसकून होंगी। और जहां पे मादर पिदर आजाद माशरे होते हैं, देख लिया इनका हाल, कितनी बेसकूनी है, माँ को पता नहीं है कि इसके बच्चे किस वाले बॉयफ्रेंड से हैं, उससे हैं या उससे हैं या वो उसके साथ जिसके साथ एक रात गुजारी थी, जो बच्चे हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनका बाप बनने को रेडी नहीं है, सब जान छुड़ाते फिरते हैं, माएं बच्चे पाल रही हैं, सिंगल मॉम्स कितनी हैं, और घरों में फिर बॉयफ्रेंड्स आते जा रहे हैं। इन बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं उन बॉयफ्रेंड से भी, कभी वो बॉयफ्रेंड ही उनकी इज्जत खराब कर देते हैं। किस माशरे की आप बात करते हैं, यहां पे कितने बच्चे हैं जो हराम से पैदा हुए हैं। वो औरतें बेचारियां रोने लगती हैं जब उनसे कोई रिश्ता उनका उनको प्रपोज करता है। वो सारी जिंदगी इस चीज की तलाश में रहती है कि कोई वफादार आदमी मिल जाए। इस्लाम ने औरत को इतनी जबरदस्त प्रोटेक्शन दी, घर दिया, छत दी, आदमी दिया, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी हर चीज की जिम्मेदारी के लिए, उसके बच्चे जो वो पैदा करेगी उनकी भी जिम्मेदारी इस आदमी में। फिर कहती है नहीं, ये इस्लाम रिस्ट्रिक्ट करता है हमें, इस्लाम तो तुम्हें फायदा देता है, तुम्हारी हिफाजत करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। देखो हर आयत के बाद ये कहा जा रहा है अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है, समझो। अल्लाह यालमु मन खलक, क्या उसको ही नहीं पता जो जिसने तुम्हें पैदा किया, उससे ज्यादा किसको पता होगा। तो वो जो अलीम और हकीम है उसने ये अहकाम दिए, इनको अपने लिए फायदा मंद समझो, अपने लिए बुरा ना समझो। उनके लोग पढ़ लेते हैं कुरान पाक को, पढ़ भी लिया ठीक है, अब हाँ अल्लाह ने ये अहकाम तो दिए हैं, अब क्या करें, मानना तो है, लेकिन अंदर दिल ना वो फिर भी ऐसे करता रहता है कि नहीं कुछ सही नहीं। अब बोलें क्या, जो कुछ लोग शर्म वाले होते हैं, कुछ तो इतने बेशर्म होते हैं कि वो फिर भी बोल देते हैं कोई बात, लेकिन जो कुछ उनमें थोड़ी हया होती है वो मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन दिल उनके फिर भी वो रहते हैं कि दिल मुतमईन नहीं रहते। मुतमईन हो जा, सिर्फ इस बात को ही सोच के मुतमईन हो जा कि जिसने ये कहा है ना, मुझे नहीं भी समझ आ रही ना, वो बताने वाला अलीम और हकीम है। डॉक्टर से नहीं आप कभी पूछते तुमने ये दवाई क्यों दे दी, तुमने मुझे सर्जरी का क्यों कह दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों किया, कभी नहीं। हम ये कहते तुम्हें तो पता नहीं है, मुझे पता है। आप जाते हैं उसके पास ही उसकी एडवाइस लेने के लिए, फिर उस मुताबिक करते हैं, जैसे वो कहता है वैसे चलते जाते हैं, उसी तरह गोलियां लेते हैं, उसी टाइम पे लेते हैं। आप कहें नहीं तुमने तो सुबह को कहा, मैंने तो शाम को लेनी, नहीं मेरी मर्जी तो ये कि मैं दो दफा ना लूं, चार दफा लूं। आपने कभी भी नहीं ये कहते, क्योंकि आप उसको जानते हैं कि वो क्या है, इल्म वाला है ना, आपको आपको ये यकीन है कि वो इल्म वाला है इसलिए। और अल्लाह के इल्म के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, वो अलीम है, अलीम। और अगर किसी को अलीम का मतलब जानना है ना, अस्माए हुस्ना में जाके, मैं यहां पे नहीं इतनी डिटेल में जा सकती, आई विश आई कुड, लेकिन अलीम का माना जानना है, समझना है, तो अस्माए हुस्ना में जाके अलीम को सुने कि वो कितना इल्म रखता है। अब ये सोचें कि उसने ये अहकाम दिए हैं और वो हिकमत वाला कितना, हमारी अकले वहां तक नहीं जा सकती। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, और फिर दोहराई गई बात, दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है, बात को दोहराया उस वक्त जाता है जब उसकी ताकीद करनी मकसूद होती है, ताकीद करनी होती है, एम्फसाइज करना होता है उस बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे तो कभी कभी किसी दुआ को तीन तीन मर्तबा करते थे, कोई बात अहम होती थी तो तीन दफा कहते थे। यहां पे ये अहम बात है, उसको फिर बताया गया कि लोगों तुम अपने लिए ये ना समझना इसको कोई मुसीबत, ये तुम्हारे लिए कोई मसले की नहीं, अल्लाह ने ऐसे अहकाम नहीं दे दिए जो बड़े सख्त हैं, ये तो बड़े रिजिड हैं, ये तो बड़े ऐसे हैं, नहीं ये इसलिए है ताकि वो मेहरबान हो तुम पे, बुरा ना मानना इसको। ये हकूक के मामलात हैं और अल्लाह को पता है कि उसने ही मर्द को भी पैदा किया, उसने औरत को भी पैदा किया, उसको पता है किसको कितने हक देने हैं, कितने किसके ऊपर फराइज रखने। व युरीदुल्लदीन यत्तबीउन शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा, ये बात है जो मैं कह रही थी आपको कि चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं शहवात की, अन तमीलु मैलन अज़ीमा, कि तुम मायल हो जाओ, बड़ा मायल हो जाना, कि तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे तुम भी चलने लगो। जो एक रास्ता है अल्लाह का, अल्लाह चाहता है तुम पे मेहरबान हो जाए, एक और रास्ता भी है। वो किन का रास्ता है, वो उन लोगों का रास्ता है कि जो ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। ख्वाहिशात के पीछे चलना क्या होता है, बस मेरी मर्जी ये, मुझे ये समझ आती है, मुझे तो नहीं ये लगता ये सही है। मैं तो मैं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं, मुझे तो समझ आती, और मैं तो समझती हूँ ऐसा होना चाहिए। ये है ख्वाहिशात का बंदा, जो अपनी सोच है, जो अपनी समझ है, मैं बड़ी अकलमंद हूं, मुझे सारा पता है, या मेरी मर्जी ये है और होना ऐसे चाहिए क्योंकि मेरा दिल ऐसे चाहता है या मेरा दिमाग ऐसे कहता है। ये है ख्वाहिशात का बंदा, एक तरफ ख्वाहिशात का बंदा। ख्वाहिश के बंदे को कहां दिल करेगा कि आप शरीयत पे चलें? ख्वाहिशात के बंदे को कहां ये वो होगा कि आप ये अल्लाह के अहकाम माने? उसको तो ये लगता है ये सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है, उसको तो ये लगता है ये क्या, ये औरत को आधा, आदमी को दो हिस्से और औरत को एक हिस्सा, ये क्या बात है? आदमी चार चार शादियां करे, औरत एक ही शादी करे। बस औरतें इतनी, बिल्कुल मैं क्या कहूं कि उनकी अकल को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो इस पे भी एतराज करती हैं कि इनको चार शादियों की, हमें क्यों नहीं चार शादियों की इजाजत? ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि कोई औरत ये सोचे। तो ये जो ख्वाहिशात के बंदे हैं ना, और नहीं उसको वली की रजामंदी क्यों चाहिए, उसको ऐसे क्यों चाहिए, यानी हर चीज के ऊपर एतराजात उनको। बस इन बातों को आप बताएंगे ना अगर, तो उनको बहुत सारे इसके अंदर मसले नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि वो अलीम और हकीम को नहीं समझते, ना उसके ऊपर उनको ट्रस्ट है, उनको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का दिल है बस। जैसे आज आप माशरे के माशरे देखें, नीचे भरे में ख्वाहिशात परस्त लोगों से, वॉट दे ओनली वॉन्ट, बस जो वॉट आई डिजायर, वट आई वॉन्ट, वट आई थिंक, बस उसी के गिर्द उन्होंने सारा, चाहे वो विरासत है, चाहे वो शादी है, चाहे वो कोई भी है, छुपी दोस्तियां हैं, नई दोस्तियां हैं, मेहर देने हैं या जहेज देने हैं, हमें हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। अगर कोई नमाज रोजा करके भी यही बातें करता है तो वो भी ख्वाहिश का बंदा ही है और कुछ नहीं है। तो ख्वाहिश, एक अल्लाह चाहता है और एक ख्वाहिश के बंदे चाहते हैं। अल्लाह तो चाहता है कि वो तुम पे मेहरबान हो जाए जब भी उसने ये सारे अहकामात तुम्हें दिए, वरना इंसान खुद नहीं समझ सकता किसको कितना हिस्सा देना है, किसके साथ कैसे करना है, किस में हमारी सेफ्टी है, किस में हमारी भलाई है। आप देख लें इंसानों बेचारों का तो ये हाल है, इनकी अकल इतनी कम है कि बेचारे रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको कोई चीज फाइंड करते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद कहते हैं नहीं वो जो रिसर्च थी ना वो गलत निकल आई, अब एक और रिसर्च चाहिए कि ये चीज आपके लिए ठीक है, फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं नहीं नहीं वो भी नहीं ठीक है, फिर कोई और चीज आपको कह देते हैं। तो ये तो कैसे बताते हैं आपको कि माशरे के अंदर अमन सुकून, उसके अंदर हारमनी, उसके अंदर सबके हकूक जहां अदा हो रहे हो, वो पुरसकून माशरा कैसे कायम हो सकता है? ये कैसे आपको बता सकते थे? इन्होंने तो एक दिन कहना था ऐसे कर लो, दूसरे दिन इन्होंने कहना था नहीं, ये वाली फाइंडिंग हमारी रॉन्ग हो गई, इससे ये मसले पैदा होते, ये कर लो अब, फिर तीसरे दिन उन्होंने कुछ और कहना था। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें जो अहकामात दिए ये कयामत तक के लिए हैं, और इन्हीं में फलाह है तुम्हारी, लोगों समझ लो। मगर चूंकि हमारे पास ना ऐसा कोई मॉडल है, ना हम ऐसे कोई देखते हैं, तो हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है इन चीजों का कि जब ऐसा माशरा होगा जिसमें इन सारी चीजों को फॉलो किया जाए तो वो कैसा पुरसकून होगा, जो कुरान के मुताबिक चलने वाला होगा उसमें उसमें कितनी हर एक के ऊपर इत्मीनान होगा, उसमें लोग कैसे प्यारे लोग होंगे, वो हमने कभी देखा नहीं ना दुनिया में, कहीं आजकल ऐसा है ही नहीं। जो इसको मानने वाले वो ही इसके ऊपर चलने को तैयार नहीं है, वो भी अपने तरीके बनाने को तैयार है। हमारी ख्वाहिश ये है, और आजकल तो हमारी ख्वाहिशात वो ही है जो के मादर पिदर आजाद जो माशरे हैं उनकी हैं, कि हमें भी उस तरह चाहिए, मर्जियां करो अपनी, अल्लाह की मर्जी से नहीं हमने चलना, हमने अपनी मर्जी से चलना। तो वो जब अपनी मर्जियां करेंगे तो उसके बाद एंड अप किधर होंगे? डिजास्टर जो आज आप देख रहे हैं, सिर्फ डिजास्टर है, हलाकत बर्बादी बेचैनी बेसकूनी। तो जब ख्वाहिशात के बंदे बनते हैं ना तो ये हाल होता है। तो चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात की कि तुम झुक जाओ, बड़े झुक जाना, यानी तुम भी जिस तरह से वो चल रहे हैं तुम भी उसी तरह चलो, तुम भी इस रास्ते से हट जाओ। इसीलिए वो फिर डाउट्स भी डालते हैं ना, ये तुम क्या, ये तो ये क्या बातें हुई, बोला ये तुम कैसे कह सकती हो, फिर वो आपको भी इस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे जो ख्वाहिशात के बंदे, वो आपको भी चलने नहीं देंगे। ये आप नोट करते ही होंगे, कहीं हमारे खानदानों के अंदर ख्वाहिशात के बंदे होते हैं, वो फिर इस तरह सीधे रास्ते को हमारे लिए इतना मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, या उसमें इतने शकुक व शुभार डालते हैं, या ऐसे उसमें टेढ़ टेढ़पन निकालते हैं कि इंसान कहता है हाँ वाकई पता नहीं ये तो ठीक है, वो भी फिर उस तरफ ही चल पड़ता। तो वो तो चाहेंगे, अल्लाह ने वॉर्न कर दिया है कि ख्वाहिशात के बंदे तुम्हें इस रास्ते पे नहीं चलने देंगे, जो रास्ता अल्लाह चाहता है कि तुम इस पे चलो। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फ अनकुम, अल्लाह तो चाहता है कि तुम इसे तख़फीफ कर दे, हल्का कर दे। पहले के अहकामात मुश्किल होते थे, अल्लाह ने तो इस उम्मत के लिए आसान अहकामात दिए, पूरी जमीन को इनके लिए बना दी, कहीं पे भी आप नमाज पढ़े, आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, आपको कहा रोजा अगर नहीं आप रख सकते तो बाद में कोई बीमारी या कोई ऐसा सफर है तो बाद में रोजा रख लें, कोई ऐसी तकलीफ आपको हो गई है नहीं उस वक्त आपकी सेहत इजाजत देती, बाद में उसको पूरा कर लें। अल्लाह ताला ने अहकामात में देखिए युसर किया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, मगर डू यू इवन बिलीव दिस, ये इसके ऊपर यकीन है आपको इस बात पे कि अल्लाह आसानी चाहता है मुश्किल नहीं चाहता, या लगता है कि मुश्किल है, आए बड़ा मुश्किल, आए दीन बड़ा मुश्किल है, इन बातों पे कैसे अमल हो सकता है, बड़ी मुश्किल। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए मैं आसानी चाहता हूँ, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए मेहरबान होना चाहता हूँ, आप कहते हैं मुसीबत मुसीबत। कहीं तो मसला है ना, फिर तो बात अल्लाह की गलत नहीं हो सकती, हमारी ही गलत है। तो अल्लाह ने आसानियां की पहली उम्मतों के ऊपर देखें, 50 नमाजें दो थी, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर को बताया था ना मेराज पे, कि जब 50 नमाजें हो गई थी फरमाया था कि आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ सकेगी, मेरी उम्मत के ऊपर इससे कम थी नमाजें, लेकिन वो भी नहीं पूरी कर सकी, तो 50 से कम कम कर करके अल्लाह ने 5 कर दी, और फरमाया 5 का अजर 50 के बराबर होगा, 5 का अजर रख दिया कि ये 5 पढ़ोगे ना 50 के बराबर तुम्हें अजर मिलेगा, इतना बड़ा रख दिया। इसी तरह उन उम्मतों के अंदर औरतों के लिए हैज की हालत में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, इस उम्मत में वो सारी उठा दी गई, कोई मुश्किलात वो वाली नहीं है हाइजा औरत के लिए जो पिछली उम्मतों के अंदर थी। पिछली उम्मतों में आपने देखा होगा सूरह बकरा के अंदर कि जब उन्होंने बछड़े की पूजा की थी तो उसके बाद कहा गया एक दूसरे को कत्ल करो, इस उम्मत में कहा गया तुम सिर्फ तौबा कर लो, बहुत सारी चीजें जो आसानियां दी गई, आसानियां उन्होंने सिर्फ अपनी जहां पे उनके जो उनकी स्पेशल जगह होती थी सिर्फ वहां पे वो लोग इबादत कर सकते थे, हमारे लिए पूरी जमीन पे कहीं पे भी कर ले, माले गनीमत उनके लिए हराम था, इस उम्मत के लिए जायज कर दिया गया। बहुत सारी चीजें इस तरह अहकामात में हैं जो उनके लिए मुश्किल थे वो अहकामात, लेकिन इस उम्मत के लिए आसानियां की गई। वखुलिकल इंसानु दाइफा, और इंसान को अल्लाह ने कमजोर पैदा किया है, अल्लाह यानी उसकी कमजोरियों को जानता है कि तुमसे गलतियां भी होती हैं, तुम फिसल भी जाते हो, तुम कमजोर हो, तो अल्लाह ने उसके मुताबिक तुम्हारे लिए अहकामात दिए हैं। मर्द की अपनी तरह की कमजोरियां होती हैं, औरत की अपनी तरह की कमजोरियां होती हैं, बाज दफा इंसान कुछ करना चाहता है मगर भूल जाता है, बाज दफा कोई चीज नहीं करना चाहता और कर बैठता है, कमजोर है, तो अल्लाह ताला ने उसकी रायत की है कि इंसान कमजोर है, अल्लाह जानता है वो कमजोर है और उससे गलतियां होंगी, अल्लाह ये जानता है, लेकिन अल्लाह ताला रायत करता है तुम्हारी इसकी, इसीलिए अल्लाह तौबा के दरवाजे खुले रखता है इंसान के लिए कि वो पलट आए अल्लाह की तरफ। तरह आप देखें, एक और चीज का मुझे याद आया कि वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लो, ये भी कितनी आसानी की गई इस उम्मत के लिए, कुर्बानी को आप खुद भी खा सकते हैं, कुर्बानी करके उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं, पहले उम्मतों में ये नहीं था, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को भी भेजते थे किसी मुहिम पे तो उनको ताकीद करके भेजते थे कि लोगों को जो बातें बताना तो आसानी की बताना, उनके लिए आसानी करना, यहाँ तक रखते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا